पहला खंड। निराला ने 1920 ईस्वी के आसपास से कविता लिखना शुरू किया और प्रायः 1961 ईस्वी तक लिखते रहे। उनकी करीब 40 वर्षों की यह काव्य साधना सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित है। पहले चरण की कालाविधि 1920 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक है। दूसरा चरण 1939 ईस्वी से शुरू होता है और 1949 ईस्वी तक चलता है। तीसरे चरण का विस्तार 1950 ईस्वी से लेकर 1961 ईस्वी तक है। रचनावली में निराला की कविता को 2 खंडों में समेटा गया है। खंड एक में पहले चरण की कविताएं संकलित की गई हैं और खंड दो में शेष 2 चरणों की। पैराग्राफ चेंज। पहले चरण में निराला की जो कविताएं पुस्तकें प्रकाशित हुई वे हैं, प्रथम अनामिका, परिमल, गीतिका, द्वितीय अनामिका और तुलसीदास। प्रथम अनामिका की जो प्रति देखने में आई है उसमें प्रकाशन वर्ष का उल्लेख नहीं है, लेकिन उसमें पंडित चंद्रशेखर शास्त्री की जो सम्मति उद्धृत की गई है उसके नीचे 3 जुलाई 1923 की तिथि दी हुई है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह पुस्तक 1923 ईस्वी की जुलाई या अगस्त में छपकर बाहर आई होगी। दूसरी बात यह कि इस पुस्तक में कवि का नाम सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी दिया गया है, यानी उसके साथ निराला उपनाम जुड़ा हुआ नहीं है। यह सुपरिचित तथ्य है कि निराला एक छद्म नाम था और वह निराला को मतवाला के अनुप्रास पर दिया गया था। मतवाला का प्रकाशन काल है 26 अगस्त 1923। इससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रथम अनामिका मतवाला के प्रकाशन के पहले निकली थी। यदि ऐसा न होता तो कवि के नाम के साथ उपनाम के रूप में उसका छद्म नाम भी अवश्य जुड़ा होता, जैसा कि हमें उसके बाद की पुस्तकों में देखने को मिलता है। मतवाला के प्रवेशांक के अंतिम पृष्ठ पर प्रथम अनामिका का विज्ञापन भी छपा है, जिसमें पुस्तक के प्रकाशित होने का पक्का संकेत है। इसके अलावा 22 दिसंबर 1923 को मतवाला का जो अंक निकला उसमें निराला की जूही की कली शीर्षक कविता इस सूचना के साथ छपी --, अनामिका से उद्धृत --। इसी समय समन्वय ब्रैकेट वर्ष 2 अंक 11 सौर अग्रहायन संवत 1980 विक्रमादित्य, सेकंड ब्रैकेट नवंबर टू दिसंबर कॉमा 1923 सेकंड ब्रैकेट क्लोज फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज में प्रथम अनामिका की समीक्षा भी निकली। इन दोनों बातों से भी पता चलता है कि प्रायः दिसंबर 1923 के पहले यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना --3 में 27 अक्टूबर 1923 का पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को लिखा गया निराला का एक पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कलकत्ते में उनकी मुलाकात बाबू मैथिली शरण गुप्त और श्री राय कृष्ण दास से हुई। तो उन्होंने --एक एक अनामिका दुनु जनिन के दीन, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम अनामिका दिसंबर 1923 ही नहीं 27 अक्टूबर 1923 के भी पहले निकले। इसे भी नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने प्रकाशित किया था। पुस्तक बालकृष्ण प्रेस ब्रैकेट 23 शंकर घोष लेन कलकत्ता ब्रैकेट क्लोज में छपी थी, जिसके मालिक श्री महादेव प्रसाद थे। प्रेस का जो पता था वही प्रकाशक का भी था। परिमल के प्रकाशन वर्ष को लेकर कोई बखेड़ा नहीं है। इसके प्रथम संस्करण ब्रैकेट गंगा पुस्तक माला कार्यालय लखनऊ ब्रैकेट क्लोज में दी गई सूचना के अनुसार यह पुस्तक संवत 1986 विक्रमादित्य में प्रकाशित हुई। अक्टूबर 1923 की सुधा में साहित्य सूची स्तंभ के अंतर्गत परिमल का प्रकाशन काल सितंबर 1929 बतलाया गया है। साहित्य साधना 3 में 25 दिसंबर 1929 का निराला को लिखा हुआ पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का एक पत्र संकलित है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आज परिमल देखने को मिली, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इससे परिमल के सितंबर 1929 में प्रकाशित होने की बात की पुष्टि होती है। गीतिका के प्रथम संस्करण ब्रैकेट भारती भंडार लीडर प्रेस इलाहाबाद ब्रैकेट क्लोज में यह सूचना दी गई है कि यह पुस्तक संवत 1993 विक्रमादित्य में प्रकाशित हुई। निराला ने 7 नवंबर 1936 को डॉक्टर शर्मा को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने यह समाचार दिया था कि गीतिका डबल इन्वर्टेड कॉमा गीतिका सोम मंगल तक तैयार हो जाएगी, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। साहित्य साधना 3 उन्हीं को 9 नवंबर 1936 को वे पुनः लिखते हैं कि डबल इन्वर्टेड कॉमा गीतिका निकल गई, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उपर्युक्त इससे यह स्पष्ट है कि गीतिका 1936 ईस्वी के नवंबर के आरंभ में निकली। पैराग्राफ चेंज। द्वितीय अनामिका के प्रथम संस्करण ब्रैकेट भंडार भारती भंडार लीडर प्रेस इलाहाबाद ब्रैकेट क्लोज में जो सूचना दी गई है उसके अनुसार यह पुस्तक संवत 1995 विक्रमादित्य में प्रकाशित हुई। 1995 में 57 घटाकर विद्वानों ने सरल ढंग से द्वितीय अनामिका का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी स्थिर कर दिया। प्राप्त प्रमाणों से यह गलत साबित होता है। 31 दिसंबर 1938 को निराला के कलकत्ते से श्री वाचस्पति पाठक को एक पत्र में लिखा था, डबल इन्वर्टेड कॉमा प्रूफ भी भेज रहा हूँ पर राम की शक्ति पूजा एक बार और देखूंगा ब्रैकेट क्लोज। साहित्य साधना 3 पाठक जी भारती भंडार से ही संबंधित थे, जिससे यह समझा जा सकता है कि निराला ने यह पत्र उन्हें द्वितीय अनामिका के प्रकाशन के संबंध में लिखा था। प्रूफ उसी पुस्तक का था और राम की शक्ति पूजा उसी पुस्तक में संकलित है। निष्कर्ष यह कि 1938 ईस्वी की अंतिम तिथि तक भी वह पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई थी। निराला का एक दूसरा पत्र 25 मार्च 1929 का आचार्य जी जानकी वल्लभ शास्त्री के नाम लिखा हुआ है, जिसमें वे कहते हैं ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा तुलसीदास और अनामिका निकल गई, ब्रैकेट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट निराला के पत्र। इसका मतलब यह हुआ कि द्वितीय अनामिका का प्रकाशन काल 1938 ईस्वी का अंत न होकर 1939 ईस्वी का आरंभ है। तुलसीदास नामक निराला की कविता 1934 ईस्वी में रची गई थी। 1935 ईस्वी की सुधा के अंकों में किस्तवार निकली थी। वे कुछ और प्रबंधात्मक कविताएं लिखकर गाथा नाम से उनका एक स्वतंत्र संग्रह निकालना चाहते थे। दुर्भाग्यवश चूंकि वैसी अधिक कविताएं वे नहीं लिख सके, इसलिए राम की शक्ति पूजा को द्वितीय अनामिका में सम्मिलित कर उन्होंने सिर्फ तुलसीदास को स्वतंत्र रूप में निकाला। जैसा कि 25 मार्च 1929 को शास्त्री जी को लिखे गए उनके पत्र में स्पष्ट है, तुलसीदास भी 1929 ईस्वी के आरंभ में ही बाहर आया, संभवतः द्वितीय अनामिका के बाहर आने के कुछ दिनों बाद। द्वितीय अनामिका की तरह ही तुलसीदास के प्रथम संस्करण में भी यह सूचना दी गई है कि उसका प्रकाशन काल संवत 1995 विक्रमादित्य है। प्रथम अनामिका में निराला की 9 कविताएं संकलित हुई थीं। बाद में जब परिमल निकला तो उन्होंने उसमें 2 को छोड़कर उसकी 7 कविताएं ले ली। परिमल में उस काल की जो कविताएं नहीं दी जा सकती थी उन्हें निराला ने द्वितीय अनामिका में डाल दिया। तुलसीदास के बारे में कहा जा चुका है कि उसकी रचना पहले हुई, पर पुस्तक रूप में उसका प्रकाशन द्वितीय अनामिका के बाद हुआ। असंकलित कविताएं में विभिन्न कालों की रचनाएं संकलित हैं। ऐसी स्थिति में रचनावली में पुस्तक क्रम से निराला की कविताएं दे सकना उलझन पैदा करने वाला होता है। लिहाजा यह उल्लेख करते हुए कि कौन कविता किस पुस्तक में संकलित हुई है, उन्हें रचना क्रम से देने का प्रयास किया गया है। खंड 1 में संकलित निराला की सभी कविताओं की रचना तिथि का पता लगाना प्रायः एक असंभव काम है। कारण यह है कि द्वितीय अनामिका को छोड़ दें तो अन्य किसी भी पुस्तक की कविताओं के नीचे उन्होंने रचना तिथि नहीं दी है। आज वे कॉपियां या डायरियां भी सुलभ नहीं हैं जिनमें वे अपनी कविताएं दर्ज किया करते थे। मजे की बात यह है कि द्वितीय अनामिका की अनेक कविताओं के नीचे उन्होंने जो तिथि दी है वो रचना काल को सूचित न कर प्रायः पत्र पत्रिकाओं में उनके प्रकाशन काल को सूचित करती है। उदाहरण के लिए प्रलाप, अनुताप, यही आदि कविताओं को देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि कविता पहले छप चुकी है और उसकी रचना तिथि बाद की दी गई है। द्वितीय अनामिका में संकलित कविता क्या गाऊं के नीचे 1 सितंबर 1924 की तिथि दी गई है, जबकि यह कविता कविंद्र में उसके पहले ही छप चुकी थी। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन काल को प्रमुखता देनी पड़ी है और इस तरह कविताओं को रचना क्रम से सजाने के स्थान पर प्रकाशन क्रम से सजाना पड़ा। प्रकाशन क्रम निश्चय ही रचना क्रम नहीं है, क्योंकि कविताओं के उनकी रचना के बाद क्रमहीन रूप में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने की पूरी संभावना है। कई बार तो कविताएं पुस्तकों में संकलित हो जाने के बाद पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं, लेकिन सामान्यतया प्रकाशन क्रम रचना क्रम के निकट होता है। इसी भरोसे खंड 1 की कविताओं को प्रायः प्रकाशन क्रम से सजाया गया है। यहाँ एक कठिनाई यह भी है कि सारी की सारी कविताएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित नहीं हुई। जो कविताएं पुस्तकों में ही मिली है उनके नीचे केवल यह सूचना दी गई है कि वे किन पुस्तकों में संकलित हैं। इससे इतना तो अवश्य पता चल जाता है कि उनका रचना काल पुस्तकों के प्रकाशन काल के पहले पड़ता है। गीतिका के आधे से अधिक गीत पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित मिल गए, लेकिन बाकी गीत नहीं मिले। जो गीत नहीं मिले उनके नीचे केवल यह निर्दिष्ट कर दिया गया है कि वे गीतिका में संकलित हैं। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि वे गीतिका के प्रकाशन काल ब्रैकेट नवंबर 1936 ब्रैकेट क्लोज के पहले रचे गए। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सामान्यतया उनकी रचना परिमल के प्रकाशन काल ब्रैकेट सितंबर 1929 ब्रैकेट क्लोज के बाद हुई होगी। निराला की जिन कविताओं को पत्र पत्रिकाओं में नहीं ढूंढा जा सका, हम आशा करते हैं कि उनमें से अनेक कविताओं को भविष्य में शोधकर्ता ढूंढ निकालेंगे, जिससे उनके रचना काल के संबंध में अधिक निश्चय के साथ कुछ कहा जा सकेगा। पैराग्राफ चेंज। निराला ने काव्य रचना का आरंभ कब किया, यह कहना मुश्किल है, लेकिन जब 1920 ईस्वी में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी तो यह स्पष्ट है कि उन्होंने कुछ वर्ष पहले से ही काव्य रचना का अभ्यास शुरू कर दिया होगा। श्री गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने लिखा है कि पहली बार संभवतः 1918 ईस्वी में उन्नाव में निराला उनसे मिले थे। उन्होंने उस समय उन्हें एक स्वरचित छंदोबद्ध कविता सुनाई थी, साप्ताहिक हिंदुस्तान 11 फरवरी 1962। इससे उक्त कथन की पुष्टि होती है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, जूही की कली निराला की पहली रचना है या नहीं, इस विषय पर डॉक्टर शर्मा ने साहित्य साधना 3 की भूमिका में पर्याप्त प्रकाश डाला है। कारण विशेष से निराला कुछ दिनों बाद अपनी काव्य रचना के आरंभ काल को पीछे खिसकाने लगे थे। अपरा 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कहा जाता है कि उसमें संकलित कविताओं के नीचे जो रचना तिथि दी गई है वह स्वयं निराला के द्वारा। उसमें अनेक कविताओं का रचना काल न केवल पीछे खिसकाया गया है बल्कि अनेक कविताओं की रचना तिथि गलत दी गई है। उदाहरण के लिए तुलसीदास का जो अंश संकलित किया गया है उसे 1938 ईस्वी की रचना कहा गया है, जबकि संपूर्ण रूप में यह कविता 1935 ईस्वी की सुधा के अंकों में प्रकाशित हो चुकी थी। इसी तरह द्वितीय अनामिका में संकलित मरण दृश्य शीर्षक कविता, जहां उसके अनुसार 5 जनवरी 1938 की रचना है, वहां अपरा के अनुसार 1939 ईस्वी की रचना। इस तरह की भूलें ढेर सारी हैं। ऐसी स्थिति में अपरा में दिए गए कविताओं के रचना काल को सही मानने का प्रश्न ही नहीं उठता है। निराला के एतत् संबंधी कथनों में स्वभावतः अनेक असंगतियां हैं। पैराग्राफ चेंज। निराला के पहले चरण के काव्य में भी 3 स्तर हैं। उनका काव्य बहुत ही संश्लिष्ट है। वे एक स्तर पर अन्य स्तरों के काव्य की भी रचना करते हैं। इसके बाद भी किसी हद तक यह विभाजन संभव है। पहले चरण के पहले दौर में वे कई तरह की कविताएं लिखते हैं, वस्तु की दृष्टि से भी और रूप की दृष्टि से भी। इस कारण उसमें बहुत अधिक विविधता है। इस दौर की अवधि मोटा मोटी 1920 ईस्वी से लेकर 1929 ईस्वी के मध्य तक है। दूसरे दौर में निराला गीतों की ओर मुड़ते हैं। पहले दौर के अंत में ही वे मुख्य रूप से गीतों की रचना करने लगे थे और उनके गीत वाणी शीर्षक से मतवाला में निकलते गए थे। इसका मतलब यह था कि उनकी योजना बाद में वाणी नाम से गीतों का संग्रह प्रकाशित कराने की थी। गीतों का वह संग्रह गीतिका नाम से निकला। गीतिका में वस्तुगत तथा रूपगत काफी विविधता है, तथापि उसकी सारी रचनाएं कविता के एक रूप गीत के अंतर्गत ही आएंगी। इस दौर की अवधि स्पष्टतः 1929 ईस्वी के उत्तरार्ध से लेकर प्रायः 1936 ईस्वी के मध्य तक है। दूसरे दौर की तरह तीसरे दौर की कड़ी भी पिछले दौर के भीतर से मुड़ती है। निराला का गीत रचना वाली दौर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, पर वे लंबी कविताओं की ओर मुड़ चुके थे। 1934 ईस्वी में उन्होंने तुलसीदास नामक अपनी लंबी प्रबंधात्मक कविता लिखी। उसके बाद इसी दौर में उन्होंने अपनी वे अमर कविताएं लिखीं जो उनके संपूर्ण काव्य साहित्य में शिखरों के समान उठी हुई हैं। डैश मित्र के प्रति, सरोज स्मृति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति और वन बेला। पहले चरण का यह अंतिम दौर प्रायः 1938 ईस्वी के सितंबर तक चलता है। इस खंड में निराला की कुछ ऐसी कविताएं भी सम्मिलित की गई हैं जो मतवाला में अनाम या छद्म नाम से निकली थी। खड़ी बोली में लिखी गई ऐसी कविताएं दो हैं, गरीबों की पुकार और देवी कौन वह। पहली कविता मतवाला के 6 अक्टूबर 1923 के अंक में निकली थी। उसके बाद उसके रचयिता का नाम नहीं दिया गया था। दूसरी कविता मतवाला के 3 नवंबर 1923 के अंक में छपी थी। उसके साथ उसके रचयिता का नाम शौहर दिया गया था। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री निराला के निकट के लेखकों में से हैं। उन्होंने अपनी पत्रिका बेला ब्रैकेट मुजफ्फरपुर के 5वें अंक में गरीबों की पुकार शीर्षक कविता फिर से छापी है और उसे निराला कृत कहा है। डॉक्टर शर्मा ने साहित्य साधना 1 में देवी कौन वह शीर्षक कविता को निराला की ही रचना ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि उक्त कविता छद्म नाम से इसलिए छपी थी कि जहां 3 से 13 लेखकों का काम लेना है, यह दिखाने के लिए कि पत्र को बहुत लेखकों का सहयोग प्राप्त है, वहां छद्म नामों के बिना काम चल ही न सकता था। ब्रैकेट पृष्ठ 70 ब्रैकेट क्लोज। इन दो बातों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ही इन दोनों कविताओं को निराला की रचना माना गया है। इस खंड में निराला की 3 ऐसी कविताएं भी दी जा रही हैं जो अब तक असंकलित थीं। ये कविताएं हैं कवि के प्रति, वेदना और रेखा। संभव है ये कविताएं निराला ने जानबूझकर छोड़ दी हों और संभव है ये उनसे छूट गई हों। हमारा ख्याल है कि उनकी कुछ कविताएं अभी भी पत्र पत्रिकाओं में दबी हुई हैं। निराला साहित्य पर शोध करने वाले वालों से यह अपेक्षा है कि वे उन्हें ऊपर करें। पैराग्राफ चेंज। निराला अपनी कविताओं में अंत अंत तक संशोधन और संपादन करते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनकी अनेक कविताओं के पाठ में अंतर मिलता है। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताओं का पाठ एक तरह का है और पुस्तकों में संकलित कविताओं का पाठ दूसरी तरह का। मतवाला में उनकी दिल्ली प्रगल्भ प्रेम और उद्बोधन ब्रैकेट गा अपने संगीत शीर्षक से ब्रैकेट क्लोज शीर्षक कविताएं छपी थीं। ये तीनों ही कविताएं द्वितीय अनामिका में संकलित हैं। मतवाला में प्रकाशित इनके रूप से इन्हें मिलाकर देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि निराला बाद में भी किस तरह अपनी कविताओं का संशोधन और संपादन के द्वारा बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते थे। इस प्रयास में कविता कभी कभी बिल्कुल बदल जाती थी। इसका दिलचस्प उदाहरण उनकी कविता शीर्षक कविता है। यह कविता मतवाला के 10 नवंबर 1923 के अंक में उस पार शीर्षक से निकली थी। बाद में निराला ने उसमें इतना परिवर्तन किया कि वह नई कविता हो गई और श्रृंगारमयी शीर्षक से माधुरी के 13 जनवरी 1924 के अंक में प्रकाशित हुई। वह अब तक असंकलित थी। इस कविता के दोनों रूप संकलित कर दिए गए हैं, जिससे निराला की सृजन प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पक्ष पर प्रकाश पड़ सके। उनकी कविताओं में पाठांतर का एक कारण मुद्रण भी है। उनकी कविता पुस्तकों के कई कई संस्करण हो चुके हैं। इस क्रम में प्रूफ रीडरों की असावधानी या अतिरिक्त सावधानी के कारण अनेक कविताओं का पाठ बिगड़ता चला गया है। अतः कविताओं को कविता पुस्तक के प्रथम संस्करणों व पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उनके रूप से मिलकर पाठ यथासंभव ठीक कर दिया गया है। जहां निराला ने स्वयं पाठांतर किया है, वहां उत्कृष्टतर पाठ को ही स्वीकार किया गया है, जो कि प्रायः परवर्ती पाठ है। निराला खड़ी बोली के कवि थे, लेकिन कभी कभी वे ब्रजभाषा और अवधी या दोनों के मिश्रण से तैयार की गई भाषा में भी काव्य रचना किया करते थे। उनकी ऐसी 5 कविताएं इस खंड के परिशिष्ट में दी गई हैं: रक्षाबंधन 1 और कृष्ण महात्म। शीर्षक कविताएं मतवाला के क्रमशः 26 अगस्त और 1 सितंबर 1923 के अंकों में मिलती थीं और उनका रचयिता पुराना महारथी को बतलाया गया था। वस्तु और किसी हद तक शैली से भी यह संकेत मिलता है कि वे कविताएं निराला द्वारा ही रचित हैं। यहाँ वे दोनों कविताएं असंकलित कविताएं से संकलित की गई हैं। एक प्रशस्ति शीर्षक कविता निराला ने श्री शिव पूजन सहाय को पत्र के साथ भेजी थी। वह यहाँ डॉक्टर शर्मा की ग्रंथ साहित्य साधना 3 से संकलित की गई है। कॉलेज का बछुआ निराला की खड़ी बोली में रची गई कविता है, लेकिन चूंकि इसकी प्रकृति खंड एक की कविताओं से भिन्न है, इसलिए इसे भी परिशिष्ट में दिया गया है। इसी में निराला की वे कविताएं भी दी गई हैं जो रजनी सेन, विवेकानंद, चंडीदास, गोविंद दास या रविंद्रनाथ की बंगला कविताओं का अनुवाद है या उनका आधार लेकर रची गई है। रविंद्रनाथ की कविताओं के अनुवाद के बारे में 2 शब्द कहना जरूरी है, क्योंकि उसी को लेकर निराला पर आफत आई थी। उन्हें संपूर्ण हिंदी संसार में यह कहकर बदनाम किया गया था कि वे रविंद्रनाथ की कविताओं का अनुवाद अपनी मौलिक कविताएं कहकर छपवाते हैं। अंततः मतवाला मंडल की दृष्टि में भी वे गिर गए थे और करीब वर्ष भर के लिए मतवाला में उनकी कविताओं का छपना बंद हो गया था। निराला को अनुदित कविताओं के साथ मूल कवि का नाम देना चाहिए था, लेकिन यह ज्ञातव्य है कि उन्होंने रविंद्रनाथ की कविताओं का भाषांतर नहीं किया है, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से फिर से रचा है। प्रसिद्ध है कि चेखव टॉल्स्टॉय की कहानियों का पुनर्लेखन किया करते थे। निराला ने रविंद्रनाथ की कविताओं को क्लासिक की गंभीरता और सौंदर्य प्रदान कर दिया है, चित्र को मूर्ति में बदल दिया है। इस दृष्टि में वे जितनी रविंद्रनाथ की कविताएं हैं, उतनी ही निराला की भी। परिशिष्ट के अंत में इस खंड में जिन कविता पुस्तकों की कविताएं समाविष्ट हैं, उनकी भूमिकाओं और समर्पण भी दे दिए गए हैं। इस खंड में संकलित निराला की कविताओं पर विस्तार में जाकर आलोचनात्मक टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। निराला मूलतः स्वच्छंदतावासी कवि थे, इसलिए स्वभावतः उनकी कविताओं में हमें आत्म स्वीकृति और आत्मभिव्यक्ति मिलती है। लेकिन यह उनकी कविताओं का एक पक्ष है। वे आरंभ से ही सामाजिक यथार्थ का चित्रण करते आ रहे थे। उनकी यह प्रवृत्ति उनमें क्रमशः दृढ़तर होती गई है। उन्हें हिंदी में दार्शनिक कवि के रूप में प्रचारित किया गया था, जिसका मतलब यह था कि वे अपनी कविताओं में केवल वेदांत का भाष्य प्रस्तुत किया करते हैं। निराला की इस खंड में संकलित कविताओं में वेदांत का प्रभाव स्पष्ट है, तथापि वास्तविकता यह है कि उनका असली झुकाव चित्रण की ओर था, वक्तव्य की ओर नहीं। इन्हीं कविताओं में वे छायावाद में मिलने वाले मिथक और यथार्थ के बीच के अंतर विरोध को गहरा बनाते हैं और उसे यथार्थ की भूमि पर हल करने का संकेत देते हैं। इस खंड का संपादन हमारे लिए इस कारण एक स्फूर्ति से भरा हुआ अनुभव रहा है कि हमने आधुनिक भारत के एक अत्यंत श्रेष्ठ कवि को क्रमशः निर्मित और विकसित होते देखा है। व्यक्ति और परिवेश के द्वंद से कैसे निराला की काव्य चेतना यथार्थ के वास्तविक रूप को पहचानने में समर्थ होती गई है, यह इस खंड की कविताओं का सावधानी से अध्ययन करने वाला कोई भी पाठक देख सकेगा। नंद किशोर नवल। पता: रानी घाट लेन, महेंद्र, पटना -800006, 9 मार्च 1982।